الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بل نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوا على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
By the name of Allah and by the blessing of Allah Almighty, we started this discussion regarding our responsibilities towards Imam and how can we change this pattern of ghaiba, 1100 years of sufferings in the absence of our Imam. And we know that we are responsible. When we know that it has never been a command from Allah that we have to suffer this ghaiba. He wishes us to get guidance from our Imam, and this ghaiba is an exception in the pattern of guidance. If Imam had Ansar, Awan, those who are going to help him, then there should not be any ghaiba. We should be close to our leader and he should be living in between us. Why we were deprived of his guidance? Because there were some problems, there were enemies and they were killing Imam. Not one of them, but 11 of them. So for 11 times we were offered a blessing from Allah and we denied this blessing. Somehow we were not proved to be successful in our task. And then we got a punishment from Allah. That okay, if you are not accepting this, then you will be deprived. As it is a law from Allah. إِن شَكَرْتُمْ لَأَرِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. So if you are asking me to give you water, or I am asking you to give me water, and you offered me a glass of water, and I took that glass, and I throw that glass away and said, still I need water. And you, feeling the thirst and feeling the need in myself, you again offered me a glass and I again did the same thing. How many times you are going to offer me a glass again? Allah did that for 11 times. And all of those purified, blessed Aima were killed, they were martyred in this way. And now Allah says that, okay, if this is your habit, to kill my representatives, those who sacrifice their life in my way, then okay, it's no punishment for you. Now show me your preparedness. Show me that now you are ready. Then I will send my last and final representative. So this is our task. We have to show that we are ready. Now we are ready after 1100 years. And if we don't do this, then unfortunately this pattern of ghaiba, this era of ghaiba will not get an end. We will remain in this punishment. And you know that the sufferings in this world, the suffering of people of this earth, mankind, will never end until unless we have a son of Fatima come and guide us. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So we are asking a question, what we should bring now? Oh, we are tired of this situation, we are tired of the problems we are looking at, and we are observing in this earth. We are tired of tyrannies, we are tired of sufferings, we are tired of injustice. So what do we want to do? How can we do this? I told you, a change in your language, a change in your dress, and recitation of a few dua without giving any substantial thing will not solve the problem. You may change your language. You may recite a few dua. You may offer a few prayers, and then you think, okay, now it's going to change. If this was enough, then of course the generation before us, I think they were better in these issues. They had nearly the same language with which we were observing in the time of Aima Athar al-Musallam. Their dresses were more common to them. They were reciting more prayers and more du'as. So while we had this labor, still carry on. So we came to a conclusion on the first day that we need substantial change. And on the second day, we saw that this change should come from our attitude, should come from our orientation, should come from our view of the universe, how we see the universe. There are three main realities in this life. And each of these three realities invites you to have an orientation. How you believe in them? Do you believe in yourself as a body or a combination of body and soul? This is one of them. The other reality, how do you see this life on earth? Is there any other life after that, or there is no other life? How do you see this universe? Is there a creator for this universe, or there is no creator? You have to have a clear orientation, clear perspective on these three realities: creator, life, and yourself. And you change the answer, you will have a completely different scenario. Now, none of us will say, I don't believe in Allah, Nauzubillah. I don't believe in hereafter, Nauzubillah Ta'ala. And none of us will say that I don't believe in soul. But say is not enough. Prove yourself. If you really prove, if you really believe in life after death, are you really ready for that life? And how much time you're investing on that life instead of this life, which you say it is superior or inferior? So this is inferior, the coming one is superior. So how much you're investing on that life? I think this is the pattern which will be changed. So if someone may come to me and ask me, how can I help my mom? How can I pay my duties towards mom? And I will tell him, in normal circumstances, just recite a dua and that will be enough. I will tell him. But I know this is not enough. And this is our way of dealing. We want a shortcut. We want a simpler way of life. Someone came to me, I think it was in Denmark, and he came to me and he said, I'm coming to you to see you from a very long distance. And I'm here to solve my problem. I have a few problems. I said, okay, carry on, tell me the problem. He said, I'm in trouble. I'm in real trouble. And for the last many years I'm in trouble. I want to solve them. I wanted to ask him about his life, the way he is living, and how he is looking at his life. But what are the problems? So when I started asking questions, he said, Maulana, I don't want these details. Just give me a topic. That's enough. I need a ta'weez from you. I said, if you came here to get a ta'weez, my response is, I don't give ta'weez. I need to solve your life. It is not going to happen only with ta'weez, only by writing a few verses of Holy Quran on a paper and you will put that verse in your pocket and that's enough, it will solve. If that was going to solve, then why the whole world is in misery? Why injustice in the whole world? Everyone can put a ta'weez in his pocket and say, that's all, it will solve it. So why we have ghaiba? So this is the way we are dealing. We want a shortcut. And I can tell you, there is no shortcut. If there was a shortcut, 1100 years is not a very small period of time, you see. It means more than 20 generations. More than 20 generations. So when we are going to learn from it, I think it's more than enough for us to learn. And look at those nations on the second day I told you. Look at those people who are getting success, achievement. they change something and they are getting rewards. And how we are, can we remain on this status? Now how I see this, I see three or four nations, three or four gatherings from Muslim Ummah, they are trying their best, they are getting rewards, and we are proud of their rewards. If you see them getting victory, you are proud of their victory. But what is your contribution? Can we always be a ladder if you then? Should not we prove ourselves and be, have some sort of contribution, participation in this global movement? This is the right time for us now. So you have potential, you have strength, utilize your strength in the way of your demand. How can you do this? I gave a simple sentence yesterday. I said, change your likes and dislikes with that of your imam. This is your marker. Look at your life, or I may say marker. I will review my life and I will say, which part of my life my imam is not going to accept. He will never like that. He will never appreciate that part of my life. Which one is this? Write a few of them, two or three. Then start fighting with those two or three habits to change them. This is Muharram, starting of a new year, starting of Azan. And you, all of you are here, alhamdulillah, with love of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
Our nafs and our soul has very strange potentials. You can develop yourself, grow closer to Allah, and you can easily show some sort of miracles from yourself. You can do this, and you know the history. But if you leave your nafs as it is, then of course it will go towards being distorted, being destroyed. So at the start of this Muharram, can you pledge, can you promise yourself with Imam, for whom you are here to mention his sacrifice, can you promise that I want to come closer to your son? Choose three or four of your habits, or in the least case, just one of them, which you think my Imam is not going to appreciate this. Then fight against them. If I'm here for 10 days and you are here a few days, and we remain here, I could not change from your life, then I can easily tell this is injustice. You should be changed. You are here on an invitation from this sacred and holy family. They wanted you to come here. They at least accepted your call to be with them. And then you are here. Of course, if you are not invited, then how come? Is there any possibility that Shaitan will bring you here? Until unless Ahlul Bayt wanted you to be here, you could not step in that room. They allowed you to be here. If they allowed you to be here, what it means? It means you have some sort of purification, nuraniyat in your heart. And I want to invest on that nuraniyat, that purification. You have some sort of purification. Otherwise, I could not be here, you could not be here. So, just develop yourself. Come closer to your Imam. And maybe someone will say that, okay, if I change my habit, is it going to help Imam? Yes, of course. This is why he is coming here. يَمْلَهُ الْأَرْضَ قِسْتًا وَعَدَّ كَمَا مُلِعَ الظُّلْمًا وَجَوْرًا. A tradition agreed upon by Shia, Sunnah and every firqa, that okay, this tradition is correct. يَمْلَهُ الْأَرْضَ قِسْتًا وَعَدَّ كَمَا مُلِعَ الظُّلْمًا وَجَوْرًا. He will be here to promote justice. Now, which sort of justice? You can't do justice with those who are doing injustice in that part of the world. You cannot fight the injustice which is being done in Pakistan, for example. You cannot fight injustice which is done even in Australia. But can you fight injustice which you are doing with yourself? At least you can do this. This is in your hand. So if you don't fight this injustice, how come you say, I will fight injustice throughout the world? You started from here. And if you could fight in this sort of injustice, which is in yourself or myself, then I will say to my Imam that, okay, my Imam, I have started my war against injustice. And you will be here to promote justice, so I'm your companion, I'm your soldier, I'm waiting for your guidance. So, dear sisters and brothers, just pick at least one of your habits which you are sure your Imam will not appreciate that. Why? I'm not telling you to go and read a few books. I'm not telling you to go and read tafaseer, because I know it may need time, and you may say that, okay, I don't have time. But do you need time to read your own self? It's an open book for you. Choose one of the habits, fight against it. And as I told you, you are here in the name of Imam. If you think that, okay, it's tough for me to fight that habit, then ask guidance from Imam. And I told you, you are blessed, otherwise you are not here. So if they are giving you some sort of blessing, why don't you receive it? And the time which we are living in is a tough time, really tough time. Not only tough because of economic condition or use of social disorder and this and that. A very clear example. I went to one of my friends. He's one of the purest heart I think. And I went to meet him, and he's during discussion. He just draw a line on a whiteboard. We have two columns, right side, left side. He started writing some of the qualities on the right side. Truthfulness, trustworthy, honest. And on the left side, he started writing the qualities which were going against these qualities. So we had 10 or 15 list of qualities here on the right side and 10 or 15 on the left side. And then he asked me a simple question. He said, which one of these two personalities fits in our society more? Who will be more successful in our society? The one who is honest, trustworthy, never cheats, always tell truth, or the one who is ready to cheat, who is ready to do anything for his own objective, for his personal benefit? Which one is more successful in our society? I said, though I don't want to say that, but unfortunately, the left one fits more in our societies. He said, Maulana, don't be sorry. I asked this question in more than 20 countries, and always the answer is same. This is the problem. You are living in a world which has all the values upside down. And this is the time which we see in our traditions as Afruzzaman, the final time, the final era, in which values are upside down. If you are successful in this society and you are being respected, it never assure you, should never assure you that you are on the right path. So check yourself, ask yourself for a target, an objective, and try to achieve that. You are blessed, you are protected, you are invited, so just get benefit of this invitation from Ahlul Bayt. Don't go back from here just asking for this word. Ask more than the word. And inshallah, you will see the day of appearance and the day of victory of Ahlul Bayt alayhi salam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
اردو میں مجلس شروع کرنا چاہتے ہیں ایک دفعہ تمام مرحومین کے ارواح کے لیے، بالاخص وہ لوگ جو عزائے سید الشہداء کے دوران شہید ہوئے ہیں، ان تمام کے ارواح کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت کریں. لاکھوں لوگوں سے اگر میں کہوں کہ مل چکا ہوں میں और नजदीक से देखता हूं तो मैं कम से कम इस बात को समझ पाता हूं। हम लोग इस दुनिया के अंदर पोलराइजेशन देख रहे हैं, लोग अच्छों और बुरों के अंदर अब बीच के रास्ते पे खड़े हुए नजर नहीं आना चाहते। अब जो अच्छे हैं वो अच्छाई की क्षमता आगे बढ़ रहे हैं और जो बुरे हैं वो बुराई की क्षमता आगे बढ़ रहे हैं। यानी अगर मैं अपने और सादा अल्फाज में कह सकूं, हम खेमों को बनता देख रहे हैं, लश्कर कुफर का खेमा भी लगता देख रहे हैं और लश्कर इमाम का खेमा भी लगता देख रहे हैं। और अब हमारे सामने ये वक्त आ रहा है कि अगर हमारे अंदर वो क्वालिटीज हुई जो इमामों की नुसरत करने वालों और मदद करने वालों के अंदर होती हैं तो हम इमाम के लश्कर में पहुंच जाएंगे। और अगर खुदा ना करे नाऊज बिल्लाह वो सलाहियतें सिफात हमें नहीं हुई तो नहीं मालूम हम फिर किस तरीके से पहुंचेंगे। और कल मैंने आपके सामने तफसील से बात अर्ज की कि यहां कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होगा। यानी मिसाल के तौर पर मैं ये सोचूं कि अल्लाह के रसूल के जमाने में जिन्होंने अल्लाह के रसूल का साथ दिया उनकी तो कुछ सिफतें नहीं है, और हमारे जमाने में इमाम का साथ लेने वालों की कोई सिफत नहीं होगी, हर अलग अलग साथ दे देगा। अच्छा कैसे हो सकता है? क्या खुदा मुख्तार के स्टैंडर्ड्स भी तब्दील होते हैं क्या? खुदा मुख्तार फरमाता है कि लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, तुम अल्लाह की सुन्नत में कभी भी तब्दीली नहीं पाओगे। अगर अल्लाह के रसूल का साथ देने वाले जो वाकई साथ देने वाले थे, अमीरुल मोमिनीन का साथ देने वाले, सैयदुल शुहदा का साथ देने वाले कुछ खास सिफात रखते थे तो हमारे जमाने में बगैर सिफतों में सब कुछ हो जाएगा। अगर आप तहम्मुल फरमाएं तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा ये शैतान हमें धोखा दे रहा है, ये शैतान हमें धोखा दे रहा है। क्यों धोखा दे रहा है? ताकि हम इस काफिले से पीछे रह जाए। ये नहीं होने का एग्जाम हो रहा है। आपको हमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड को पूरा करना पड़ेगा तब कहीं जाकर हम इमाम की नुसरत कर पाएंगे। अब वो मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है? हमने चंद सिफात को बयान करना है चंद दिनों के अंदर। एक सिफत आपकी खिदमत में कल इख्तिताम के मौके पर अर्ज हुई थी और वो सिफत ये थी कि ये लोग अक्ल और शऊर के ऊपर चलने वाले लोग, ये लोग रस्म रिवाज पर चलने वाले लोग नहीं है। और इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा कि क्यों ऐसा होता है कि लोग अक्ल और शऊर से कुछ समझ रहे होते हैं लेकिन फिर भी रस्म रिवाज के नाम पर कहीं और जाते हैं। दुरूद अली मोहम्मद वाले अक्ल और शऊर हम किसे तादीद करते हैं, हम किसे कहते हैं? इसको हम एक माना में आजादी कहना चाहते हैं, आजादी कहना चाहते हैं। मसलन आजाद इंसानों में किसका तस्करा कर सकते हैं? मसलन सिर्फ मिसाल के रूप पर हजरत हमजा अलैहिस्सलाम को तस्करा करो, आजाद इंसान। जाहिलियत के जमाने में हजरत हमजा शहर से फरार करने के लिए, शहर का माहौल उनको पसंद नहीं था जिसमें जुल्म था, जिसमें बुतपरस्ती थी, जिसमें जाहिलियत थी, वो शहर के इस माहौल से बचने के लिए जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में जाया करते थे, शहरों से बाहर रहा करते थे। मशहूर था कि इंतहाई बहादुर हैं, मशहूर था कि अपने काम के अंदर ताक हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, ताकतवर भी हैं, लेकिन इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जंगलों में जाया करते थे, जानवरों को शिकार किया करते थे। फिक्र के अंदर आजाद इंसान थे। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, नबूवत के पैगाम को देना शुरू किया और लोगों ने फौरन मुशायदा करने की कोशिश की कि देखो हमजा किसका साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हजरत हमजा ने नबी का साथ दे दिया तो ताकत कुछ और हो जाएगी। और एक मौके के ऊपर तशरीफ लाते हैं मक्का के अंदर, देखते हैं कि भतीजे के ऊपर जुल्म हो रहा है, उन्होंने एक दीन का ऐलान किया, लोग कबूल नहीं कर रहे और उल्टा उनके लिए अज़ियत और आज़ार का सबब बने हुए हैं। हजरत हमजा तशरीफ लाते हैं, एक मौके के ऊपर अबू जहल का मुकाबला करते हैं और उसके बाद खड़े होकर ऐलान करते हैं, अगर किसी ने सुनना है तो सुन ले, आज से मैं मोहम्मद के सामने। मैं कहता हूं ये आजाद इंसान है, अक्ल और शऊर का साथ दिया है, रस्म रिवाज का साथ नहीं दिया है। मामूलन ये लोग अपने माशरे के बागी हैं। जो लोग अहले बैत असार अलैहिस्सलाम का साथ देते थे, जो लोग अंबिया का साथ देते थे, मामूलन अपने गलत माशरों के बागी होते थे, उसके खिलाफ रिवॉर्ड करते थे। क्यों? उनसे अदल जुल्म बर्दाश्त नहीं हो सकता था, वो अदल के मानने वाले थे। लिहाजा ऐसा नहीं होता, अगर आप صرف میں نہیں کہوں تو میری ذمہ داری ہے. اور میں بعض اوقات مجبوراً اس بات کو یاد دلاتا ہوں, آپ لوگ کیوں بلاتے ہیں کسی کو؟ یعنی پر سمجھے, اگر آپ نے مجھے بلایا ہے اور آپ نے مجھ سے کہا کہ میں یہاں 10 دن مجلسیں پڑھوں مثلا, آپ نے کیوں بلایا؟ آپ نے صرف ایک ہدف سے بلایا, اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہدف ہے تو شاید صحیح نہیں ہوگا. اور آپ کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ تم کو دین پتا ہے اور ہمیں دین چاہیے. صرف ہدف آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں اور تمہیں دین معلوم ہے, آؤ بیٹھو یہاں پر اور ہمیں دین سکھاؤ, ہمیں وہ دین سکھاؤ جس کی خاطر سعید الشہدا نے جان دی, ہمیں وہ ہدف بتاؤ جس کی خاطر سعید الشہدا نے جان دی. اب سعید الشہدا کے چاہنے والے انکان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف قدینی, سعید الشہدا ارشاد فرمائے, اگر دین محمد کی بقا اس میں ہے کہ میں مارا جاؤں تو آؤ شمشیر اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. اب سعید الشہدا کے چاہنے والے, آپ نے کیوں بلایا؟ اس لیے بلایا کہ ہم سعید الشہدا کا تذکرہ کریں, سعید الشہدا کے آداب کا تذکرہ کریں. جس دین کی خاطر وہ جان دے رہے تھے وہ دین آپ تک پہنچنا چاہیے. اب اگر میں یہاں پر آؤں اور آپ کو دین نہ دوں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہو تو میں نے ناانصافی کی ہے. مجھے آپ کو بتانا پڑے گا کہ اصل دین جو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ حاصل کریں سید الشہدا کے نام پر, وہ دین کیا دین ہے؟ وہ دین ظلم برداشت نہیں کرے گا. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر آپ کے اندر خدا نہ کرے نعوذ باللہ روٹین لائف کی روٹین کو فالو کرتے کرتے یہ عادت پڑ گئی ہے کہ آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھانا چاہتے, تو میں مطمئن ہوں کہ آپ چرض کروں گا. یہ صفت اچھی صفت نہیں, یہ صفت آپ کو امام کے لشکر کے نزدیک نہیں لے کے جائے گی. آپ کے اندر اس کے مقابلے میں ایک اور صفت ہونی چاہیے, اور وہ صفت کیا ہونی چاہیے؟ وہ یہ کہ نہ آپ ظلم کریں گے نہ آپ ظلم برداشت کریں گے. آپ کے اندر سعید الشہدا کی اسپرٹ ہونی چاہیے. احسان محترم, ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہم لوگ کیوں یہاں پر آئے ہیں؟ میں ہمیشہ سوچتا ہوں صرف ایک بات کی خاطر آئے ہیں, سعید الشہدا نے ایک پرچم بلند کیا ہے, ہم چاہتے ہیں وہ پرچم لہراتا رہے. سعید الشہدا نے میدان عاشورہ میں تنہا کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا ہے, وہ جملہ قیامت تک لوگوں کے کانوں میں پہنچتا رہے, اور حسین کے ماننے والے اس جملے کے بعد تب بیک کہتے رہے. یہ ہمارا ہے, ہم وہ انسان نہیں بننا چاہتے جو ہر مننا سنی انسر نہ سنے اور نظر انداز کرے. ہم نہیں بننا چاہتے, ہمیں مادر حسین کے سامنے منہ دکھانا ہے, ہمیں قیامت کے دن اس مقدس خاندان کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ مولا آپ نے ندا دی تھی, ہم نے لبیک کہا, ہم لبیک کہنے والا بننا چاہتے ہیں. ہم اپنی روح سے اپنے ایمان کے سامنے کہنا چاہتے ہیں مولا 1400 سال پہلے ہوتے تو آپ کے خاطر جان کے ساتھ کرتے, اب چونکہ نہیں ہیں ہمیشہ ذکر کریں گے, اور جو آپ کی ندا پر لبیک کہنے کے تقاضے ہیں انہیں پورا کریں گے. ہم اہل وفا کے لیے آئے ہیں. اور میں کل پرسوں یاد نہیں آتا, کل یا پرسوں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, یہ ان کی اس کی خاطر ہماری ماؤں نے ہمیں زندہ رکھا ہے, اس کی خاطر انہوں نے پالا ہے کہ ہم امام حسین کے ساتھ دینے والے بنیں گے, ہم سعید الشہدا کا ساتھ دینے والے بنیں گے. ایسا نہیں ہوتا, ہم لوگ ایک دنیا کے سامنے ہیں, اس دنیا کے اندر کچھ انسانوں کے اندر صفات بنانے کی کوشش کی گئی, اور یہ جتنی کوشش کی گئی ہے وہ اس حوالے سے کی گئی ہے کہ ان کے اندر ظلم کے خلاف رد عمل دکھانے کی طاقت نہ رہے, یہ ریئیکٹ نہ کریں. میں اس سے پہلے کہ اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں چند جملہ درج کروں, ایک اور بنیادی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. آپ الحمدللہ بہت غور سے سماعت کر رہے ہیں, بہت غور سے سن رہے ہیں, اس سے میرا بھی حوصلہ بڑھ رہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اور زیادہ اس معاملے کو شہد کی طرف لے جانے کی کوشش کروں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بنیادی سوال آپ سے کروں گا, سید الشہدا 61 ہجرا میں ایک لشکر لے کر چلے تھے, اس موقع پر دنیا کے اندر دو کیمپس بالکل واضح تھے, ایک سید الشہدا کا اور ایک یزید ابن معاویہ کا. سید الشہدا کا کیمپ ایک طرف تھا, یزید ابن معاویہ کا کیمپ ایک اور طرف تھا, اور سیدنا شہداء نے اس واقعے پر فرمایا تھا میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. صحیح. اب میں آپ کی خدمت میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کیا وہ جنگ ختم ہو چکی ہے؟ اگر آپ کہیں جنگ ختم ہو چکی ہے تو الٹیمیٹلی ایک لشکر مکمل فتح حاصل کر چکا ہے. کیوں؟ یہ ایسی جنگ نہیں تھی جو دونوں ساتھ چلتے رہیں اور جنگ ختم ہو جائے. یہ جنگ کسی ایک ہی فتح پہ ختم ہو گئی. یا تو اس دنیا پر شیطان کا لشکر حاوی ہو جائے، معاملہ ختم ہو جائے، نعوذ باللہ تعالی، خدا کبھی یہ نہیں ہو سکتا. یا اس دنیا کے اوپر پرچم حسین پورا کا پورا لہرا جائے. اس جنگ کے دو ہی نتیجے، ان دونوں سے کوئی ایک ہوگا، اور اگر یہ دو نتیجے میں سے کوئی ایک نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے جنگ ہنوز جاری ہے، جنگ جاری ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیا لشکر شیطان پوری دنیا کے اوپر مکمل حاکم ہو چکا؟ میں کہوں گا نہیں، اور کبھی نہیں ہوگا. کیا لشکر اہل بیت پوری دنیا کے اوپر مکمل حاکم ہو چکا؟ میں کہوں گا نہیں، اور قطعاً یہ ہوگا. تو ہم ان دو کے درمیان میں زندگی گزار رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے جنگ ابھی بھی جاری ہے. اب میں آپ کی خدمت عرض کروں گا، اگر آپ نے میری نرائز کو اگر آپ نے خطابت سمجھ کے سنا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے کچھ الفاظ جمع کرنے اور 40-45 منٹ بولنا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ واقعا ان باتوں کو دلیل سمجھتے ہیں، اور میں ان کو دلیل و استدلال کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ دلیل سمجھ کے اس کو قبول کرتے ہیں کہ ہاں واقعا جنگ جاری ہے، دل کی گہرائی سے اس کو قبول کرتے ہیں، تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، آپ لشکر حسین نے کسے دیکھا ہے؟ لشکر یزید نے کسے دیکھا ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں جنگ چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں ایک لشکر حسین ہے اور ایک لشکر یزید ہے. ان کو آپ نے کب تشخیص دیا؟ آپ نے ڈسٹنگوش کیا؟ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اس کو؟ اگر آپ نے اسے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہے، پہلی غلطی یہیں پر ہو چکی ہے. تو آپ نے کیوں آئیڈینٹیفائی نہیں کیا؟ آپ سے جو شوہر کے چاہنے والے ہیں وہ فرما رہے ہیں مسلی لال بھائی جو مسلم میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. ایک اور تیسرا آپشن بھی ہے، آپ یہ کہیں کہ حق اور باطل کی جنگ میں بریک آ چکا ہے. ایسا کبھی ہوا ہے؟ کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے تسلیم کریں کہ حق اور باطل کی جنگ ہنوز جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے. اگر جاری ہے، ایک سادہ سوال ہے، آپ نے کبھی پہچانا ہے کہ حق کی جنگ کی طرف کون ہے؟ حق کے لشکر میں کون ہے؟ باطل کے لشکر میں کون ہے؟ اور اگر میں اس سوال کو اور بڑھانا شروع کر دوں، حق کا لشکر کچھ وسیلوں کو استعمال کرتا ہے، ان وسیلوں کو پہچانا. باطل کا لشکر کچھ طریقوں کو استعمال کرتا ہے، وہ طریقے کون سے ہیں؟ آپ کے زمانے میں حق کا لشکر کون سا ہے؟ آپ کے زمانے میں باطل کا لشکر کون سا ہے؟ اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر آپ صرف الفاظ سمجھ کے سن لیں گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو اپنے ذہن سے سوال بھی کرنا پڑے گا. اور میں آپ کی خدمت میں ایک اور بالکل صاف صاف بات کہہ دوں، میں قیامت کے دن خدا کے سامنے اس کو دلیل بناؤں گا. میں کہوں خدا میں نے اپنی ذمہ داری پورا کیا، میں نے ان کے سامنے کہہ دیا، اگر انہوں نے نہیں کیا ہے یہ ان کا کام ہے، میں جو کر سکتا تھا وہ میں کروں گا، اور جو میں کچھ آپ کے سامنے کر سکتا ہوں وہ یہ کہ میں جتنا تفصیل سے بیان کر سکتا ہوں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. عزیزان محترم، یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کوئی حق کا لشکر نہ ہو، یہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کوئی باطل کا لشکر نہ ہو، حق اور باطل کی جنگ ختم ہو چکی ہے، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ صرف اس صورت میں ہوگا، یا تو باطل پورا حاکم ہو جائے یا حق پورا حاکم ہو جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے جنگ چل رہی ہے. اگر جنگ چل رہی ہے دونوں کے لشکر کہاں ہے؟ اور یہاں پر آ کر پھر وہ کوشچن آتا ہے، جو حق کے لشکر بنے ان کی صلاحیتیں کیا ہیں، ان کی صفتیں کیا ہیں، تاکہ میں دیکھ سکوں میرے اندر وہ صفتیں ہیں یا نہیں ہیں. اب پوائنٹ بالکل کلیئر ہے، میرے نزدیک حق اور باطل کی جنگ میں کوئی بریک نہیں ہے، میرے نزدیک حق اور باطل کی جنگ ابھی بھی جاری ہے. میرے جیسے طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے کہ حق کے لشکر میں چلنے والوں کی صفتوں کو پہچان لوں تاکہ میں حق کے لشکر کی سمت بڑھ سکوں. اور جو میرا آبجیکٹو ہے, جو میرا مشن ہے, وہ یہ کہ میں ان صلاحیتوں کو اتنا بڑھاؤں کہ جب میرے امام کا لشکر بننے لگے تو مجھے اس لشکر میں جانے کی اجازت مل جائے. یہ میرا ہدف ہونا چاہیے. آپ کو بھی اسی ہدف کی دعوت دوں گا. خدا آپ کو اور ہمیں کامیابی نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل
محمد.
پہلی صفت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, یہ لوگ ظلم کو قبول نہیں کرتے, یہ لوگ عدل چاہتے ہیں, خاموش بیٹھنا بھی قبول نہیں کرتے. یہ بھی میں اس وقت تھوڑا چند جملہ اس کے اوپر بولتا چلا جاؤں. میں نہیں چاہوں گا کوئی چیپٹر ایسا رہ جائے جس کی وجہ سے شیطان آپ کے اور میرے ذہن میں ایکسکیوز کریٹ کر دے. میں نہیں چاہوں گا. آپ اور میں مولا امین مومنین کی ماننے والے ہیں, مولا امین مومنین کی چاہنے والے ہیں. آپ ماشاء اللہ اتنی تعداد میں یہاں پر جمع ہے, میں دل چاہ رہا ہوں مولا امین کا نام بلند ہو. ایک دفعہ نعرہ لگائیے گا, نعرہ حیدری مولا کے نام کے ساتھ میں. خدا آپ کو سلام کی نصیب فرمائے. مولا امین مومنین نے ایک وصیت فرمائی ہے دو شہزادوں کو, فرمایا اے بیٹو, کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. اے دو فرزان, ظالم کے دشمن بنو, مظلوم کے مددگار بنو. یہ بہت خوبصورت جملہ ہے. کونا للظالم خصما, اے فرزان, دو فرزان کو خطاب کیا ہے, دو شہزادوں کو خطاب فرمایا ہے. فرمایا تم دونوں ظالم کے دشمن بن جاؤ, مظلوم کے مددگار بن جاؤ. آپ شاید عربی زبان کے ماہر نہ ہوں, میں نے اردو میں ترجمہ کر دیا. کیا اس میں نیوٹرلزم کی گنجائش ہے؟
سبحان اللہ,
اس میں نیوٹرل بننے کی کوئی گنجائش ہے؟
سبحان اللہ.
امام نے تین راستے نہیں دیے ہیں, امام نے دو راستے دیے. فرمایا ایک یہاں پہ ظالم ہے, ایک یہاں پر مظلوم ہے, اور اگر تم تھرڈ پرسن ہو تو تم پر ذمہ داری ہے کہ تم ظالم سے دشمنی کرو. کیا مطلب ظالم سے دشمنی کرو؟ یعنی تمہیں حق نہیں ہے تم کہو میں ظالم کے ساتھ بھی نہیں ہوں اور میں مظلوم کے ساتھ بھی نہیں ہوں. ایسی کوئی گنجائش نہیں. تم ظالم کے دشمن بنو, مظلوم کے مددگار بنو. اے مولا, میں اگر مشرقی وسطی میں ہوں, مڈل ایسٹ میں ہوں, تب ایسے کروں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں. آپ کے پاسپورٹ کو دیکھتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ مثلاً مولا, اگر میں آسٹریلیا میں ہوں تب بھی یہی ذمہ داری ہے یا صرف مڈل ایسٹ میں یہ ذمہ داری ہے؟ آپ خود بتائیے, مولا کے کلمات کو جغرافیہ میں محدود کر سکتے ہیں کیا؟ میں جغرافیکل باؤنڈریز بناؤں مولا کے کال کو سمجھنے کے لیے؟ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ کائنات کا مالک ہے, یہ جغرافیاؤں میں نہیں آتا, اس سے کال جغرافیہ میں نہیں آتا. یہ جو بولتے ہیں پوری کائنات کے لیے بولتے ہیں. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں, قانون ایک ہی قانون ہے, ظالم کے دشمن بنو, مظلوم کے مددگار بنو. اب میں آپ سے ایک سوال اور کروں گا. ہمیشہ کوشش کروں گا سوال کرتا رہوں تاکہ آپ کے ذہن خود جواب بھی ڈھونڈتے رہے, اس کا ایک بہت اچھا فائدہ ہوگا. اگر ہم جیسے بولنے والے سب بھی مر گئے تب بھی آپ کا ذہن سوال کرتا رہے, یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. کبھی بھی سامعین کو صرف سامعین نہیں ہونا چاہیے, ان کو خود اپنے ذہن سے سوچنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے. یہ ہے انسان کی ڈیولپمنٹ. میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا, آج دنیا میں ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ نے ظالم کو پہچان لیا؟ کیوں, ممکن ہے آپ کے ہاں ظلم ہے لیکن میں نے ظالم کو نہیں پہچانا, تو پھر آپ نے اس امام کے فرمان پر عمل کیسے کیا کہ ظالم کے دشمن بنو؟ اگر یہاں پہ کوئی ظلم ہے تو فوراً دو شخصیتیں ہیں یہاں پر, ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے. اگر ظلم ہے, अगर सिर्फ जस्टिस होता तो मैं समझता हूं कि इमाम तशरीफ लाएंगे तभी हो सकेगा, वरना नहीं होगा। इसका मतलब है इनजस्टिस है, जुल्म है। अगर जुल्म है तो यहां पे एक जालिम है और एक मजलूम है। अगर आपने जालिम को नहीं पहचाना है तो आपने इमाम की फरमान से अमल कैसे किया है? अगर आप मजलूम को नहीं जानते हैं, आपने इमाम की फरमान पर अमल कैसे किया है? और अगर खुदा ना करे आपने इमाम की फरमान पर अमल नहीं किया है तो आपने जिंदगी में फिर और क्या किया? हम इमाम की जानने वाले हैं। आपको और हमें उस जिंदगी के ऊपर फख्र है जो अमीर मोमिन की विलायत में गुजरे, उनकी मोहब्बत में गुजरे। इस मोहब्बत और विलायत के कुछ तकाजे हैं। आप जालिम को पहचाने, मजलूम को पहचाने, जालिम के खिलाफ जो कुछ कर सकते हैं करके अपने ईमान से कहें मौला मैं इतनी दुश्मनी कर सकता था, कम से कम इतना तो कर लेना। भाई एक आदमी है वो जालिम को देखता है और कहता है देखो मेरे पास ताकत है मैं जालिम का मुकाबला कर लूंगा। जैसे ही वो ये कह के मैदान में उतरता है ज्यादा से ज्यादा ये होता है जालिम उसको खत्म कर देता है, शहीद कर देता है, वो कामयाब हो गए। हमारी मंत्र यही कहती है, करबला की मंत्र यही कहती है, तुम जुल्म को देखो बर्दाश्त ना करो मुकाबला करो और वो तुम्हें मार दे तुम्हारे लाशों को पामाल कर दे तुम नाकाम नहीं हुए तुम कामयाब हो गए। हम सही तो शोधा के मानने वाले। मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले मरने में आप जालिम को पहचाने, मजलूम को पहचाने, उसके बाद अपने आप से एक सवाल कीजिएगा मैं अमीर मोमिन का कितना मानने वाला हूं। जितनी आपके अंदर ताकत हो उतना जमा करें और जालिम के खिलाफ आवाज उठाएं। कम से कम काम यह होगा, कम से कम काम यह होगा आप अपने मौला के सामने सुरखुरू होकर कहेंगे मौला मैं आवाज उठाने की ताकत रखता था मैंने आवाज उठाई। और खुदा न करे अगर आपने यह भी नहीं किया तो फिर मुझे बताइए आपके अंदर वो सिफत कहां है जो आपको लश्कर ईमान के अंदर लेकर आएगी। जो इमामों का साथ देते थे, इमामत का साथ देते थे, नबूवत का साथ देते थे, वो अपने माशरों के जुर्म के खिलाफ बगावत किया करते थे, वो कबूल नहीं करते थे। अच्छा वो क्यों कबूल नहीं करते थे? एक बुनियादी वजह है और अब मैं इसकी गहराई की तरफ जाना चाह रहा हूं। ये जो कुछ लोग जुर्म के खिलाफ आवाज उठा लेते हैं और कुछ लोग आवाज नहीं उठाते, ऐसा क्यों होता है? तो सबके सामने जुर्म हुआ है। सैयदुश्शुहदा के जमाने में सबके सामने आंखों के सामने यजीद इब्न मुआविया ने जुल्म किया, दीन इस्लाम के ऊपर जुल्म करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने आवाज उठाई और बहुत सारे लोगों ने आवाज नहीं उठाई। हमेशा यही हुआ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद का मुकाबला किया तो कितने लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का साथ दिया? कुछ लोगों ने साथ दिया और बहुत सारे लोगों ने साथ नहीं दिया। हमारे जमाने में भी यही हो रहा है। अब एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये लोग जो साथ नहीं देते क्या हमेशा इस वजह से साथ नहीं देते कि ये जानते नहीं? यानी चूंकि नहीं जानते इसलिए साथ नहीं देते। तो मैं आपसे कहूंगा नहीं, हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं जिसमें जानते भी थे फिर भी साथ नहीं दिया। आप कूफा के बारे में क्या कहेंगे? वो नहीं जानते थे अहले बैत कौन है। मुस्लिम उम्मा के बारे में क्या कहेंगे? मदीना में रहने वालों को, उन्होंने सैयदुश्शुहदा को नहीं देखा था क्या? उन्होंने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा था कि सैयदुश्शुहदा को अपने कंधे के ऊपर बिठाते थे? उन्होंने सब कुछ देखा बता, वो जानते बूझते हुए साथ नहीं दे रहे थे। क्यों साथ नहीं देते लोग? हम इस गहराई में मानना चाहते हैं क्यों? क्यों हम ये काम करना चाहते हैं? ना इसलिए कि हम तारीख में चंद लोगों के ऊपर कुछ बदनामी डालना चाहते हैं, नहीं, इस खातिर नहीं। एक और दुनिया दिखा दो, मैं उस मुसीबत में ना फंस जाऊं कि मैं समझ रहा हूं कि यहां पर जुल्म है फिर भी साथ नहीं देता। मैं इस मुसीबत से ना फंस जाऊं, लिहाजा मुझे फौरन यह समझना चाहिए जो लोग जुल्म के मुकाबले में खामोश रह जाते हैं ये क्यों ऐसे करते हैं। एक बुनियादी वजह होती है। अब उनकी खिदमत में अर्ज करूंगा दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंसान के अंदर कुछ अटैचमेंट्स होती हैं, कुछ वाबस्तगियां होती हैं। इंसान का दिल किसी चीज से जुड़ जाता है। ये जो इंसान की मोहब्बतें होती हैं जिसको हम अटैचमेंट्स कह सकते हैं, ये अटैचमेंट्स अगर अल्लाह के हुक्म के अंदर रहते हुए ना हो तो बहुत खतरनाक हो सकती है। मैं दुनिया की सबसे अच्छी अटैचमेंट्स में से एक की मिसाल दूंगा। इस अटैचमेंट को हम उर्दू में वाबस्तगी कह सकते हैं, ताल्लुक कह सकते हैं। एक बहुत अच्छी मिसाल दूंगा, इंसान की वाबस्तगी होती है, अटैचमेंट होती है अपनी औलाद से। ये बुरी है या अच्छी है? अच्छी है। हुक्म खुदा से हटकर हो तो फिर कैसी है? फिर बुरी है। हुक्म खुदा से हटकर हो क्या मतलब? हुक्म खुदा से हटकर हो का मतलब यह कि अगर अल्लाह कहे कि इससे लड़ना है और वो मेरा बेटा है, और अगर मैंने खुदा की खातिर नहीं किया है तो मैं नहीं लड़ूंगा। हमारे पास नहजुल बलागा में एक फरमान मौजूद है मौला का, फरमान को जो जंगें हमने अल्लाह के रसूल के हमराह लड़ी उनमें अजीब मंजर होते थे। कभी ऐसा होता था कि कोई बाप अपने बेटे पर भी शमशीर चलाता था, ऐसा हुआ। कभी किसी बेटे ने अपने बाप के ऊपर भी शमशीर चलाई, ऐसा हुआ। क्यों ऐसा हुआ है? इन लोगों ने क्यों ऐसा किया है? क्या ये बाप बेटे नहीं थे? क्या इनके दिलों में मोहब्बत नहीं थी? मोहब्बत थी, लेकिन जब अल्लाह के हुक्म के सामने आती थी तो पामाल कर देते थे, फिर कुर्बान कर देते थे। क्या इनके अंदर अटैचमेंट नहीं था? क्या ये संदिग्ध थे? नाउज बिल्ला ताला, इनकी सीनों में दिल नहीं थे? इनको अपनी औलाद अच्छी नहीं लगती थी? अच्छी लगती थी, सब कुछ सही था, लेकिन खुदा के हुक्म के सामने फिर अच्छी नहीं लगती थी। हम इंसानों के साथ ये मुसीबत है, हम लोगों में कुछ अटैचमेंट्स बन जाती हैं, कुछ वाबस्तगियां बन जाती हैं। जब खुदा के हुक्म का मौका आता है कि अब कुर्बानी दो, वो अटैचमेंट जान नहीं छोड़ती, उसे कुर्बान नहीं कर पाते। जब उसे कुर्बान नहीं कर पाते तो आंखों से देख रहे होते हैं फर्जंद हरा कुर्बान होगा, फिर भी साथ नहीं देते, फिर भी साथ नहीं देते। क्यों साथ नहीं दे रहे? इसको अपनी जिंदगी अजीज है। जिंदगी को चाहना कोई बुरी बात है? नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर खुदा के हुक्म के मुकाबले में आ जाए फिर बहुत बुरी बात है। औलाद को चाहना बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। हुक्म खुदा के सामने आ जाए फिर बहुत बुरी बात है। आप कैरियर बनाए ये बुरी बात है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खुदा का हुक्म कुर्बान हो रहा फिर गलत बात है। हम लोगों के साथ ही मुश्किल है। अच्छा, एक बात और मैं आपके खिलाफ प्रयास करूं। कभी हम लोग जब की तारीख पढ़ रहे होते हैं वाकई करबला मिसाल के तौर पर, या दूसरी अहदत अथार की या अनमायमत अम्बिया की तारीख, और उसमें हम लोगों को देखते हैं कुछ कैरेक्टर्स को कि इन्होंने साथ नहीं दिया, तो हम उन्हें बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं कि उन्होंने साथ नहीं दिया, बहुत गलत है। और बिल्कुल सही भी है, उन्होंने जिसने साथ नहीं किया उसने जुर्म किया, हुक्म के रास्ते पर चला। अच्छा, कभी आपने एनालिसिस किया कि इन्होंने क्यों साथ नहीं दिया होता? उनकी एक्सक्यूजेस पढ़ी हैं? उनकी एक्सक्यूजेस बिल्कुल वही होती हैं जो हमारी हो सकती हैं, बिल्कुल वही। जंगे तबूक का मामला था, जंगे तबूक के लिए लंबा सफर करना था अल्लाह के नबी को। लोगों से कहा कि तुम लोग चलो, उस वक्त बाहर जाने में दो मुश्किल आती हैं। ये वक्त इंतहाई कम है और ये हर रोज होगा, क्योंकि हमारी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा हम वक्त के ऊपर खत्म करें। ये मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि उस जमाने में, नदी के जमाने में, मौलाना मोमिन के जमाने में भी फौज नहीं होती थी। यानी मिसाल के तौर पर जो आजकल होता है, फौज ही एक प्रोफेशन है। आर्मी में जाना, एयरफोर्स में जाना, या मिसाल के तौर पर नेवी में जाना, आर्म फोर्सेस में जाना, ये एक प्रोफेशन है। उस जमाने प्रोफेशन नहीं होता था। अगर दुश्मन की तरफ से कोई थ्रेट आता था तो मस्जिद में अनाउंसमेंट होती थी कि इस्लामिक सोसाइटी को एक थ्रेट का सामना है, जितने भी लोग जंग लड़ने के काबिल हैं वो अपने अपने कामों को छोड़कर आर्मी बनाने की कोशिश करें। अब लोगों को क्या करना पड़ता था? हर आदमी को अपनी लाइफ को छोड़ना पड़ता था, उसको अपना असलाह भी खुद लाना पड़ता था। वेपन्स भी नहीं मिलते थे, वो भी खुद लाएगा, अपने प्रोफेशन को छोड़ेगा, अपने काम को छोड़ेगा, असलाह भी खुद लेकर आएगा, अल्लाह के रसूल के सामने खड़ा हो जाएगा, ए अल्लाह के रसूल मैं जंग करने को तैयार हूं। भाई, तुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं? कुछ भी नहीं। ये जो तुम अपनी एग्रीकल्चर छोड़कर आए हो और तुम्हारी एग्रीकल्चर खराब हो जाएगी तुम्हारे पीछे, इसकी कंपनसेशन में तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे? कुछ भी नहीं। ये जो तुम अपनी भेड़ बकरियां छोड़कर आए हो ये शायद मर जाएंगी सारी की सारी, तुमने पता नहीं 5 साल में जमा की थी, ये जो तुम जंग में जा रहे हो ये सब मर जाएंगी, इसके कितने कंपनसेशन अल्लाह के रसूल तुम्हें देंगे? कुछ भी नहीं। अच्छा, इसके ऊपर अगर कोई नहीं आया जंग के अंदर तो खुदा ने कहा इनको बता दो कि जहन्नम की आग बहुत गर्म है, तुम नहीं आ रहे हो लेकिन मैं जहन्नम में डाल दूंगा तुम्हें। अच्छा, हमारे पास क्या एक्सक्यूजेस होती हैं? अगर मैं इस काम में चला गया तो मेरी जॉब चली जाएगी, तो वो भी कह रहे। अगर मैं वहां चला गया ना तो मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा, वो भी यही कह रहे। आप समझ रहे थे कि वो कुछ और कह रहे हैं? नहीं, वो भी यही बातें कर रहे थे। और उसके बाद अल्लाह ने क्या सुनाया था? इनको बता देना जानना कि आप बहुत गर्म होती है। हम इंसान नहीं पे खड़े हैं जीतर, हमारे पास कुछ सेम एक्सक्यूज है। अब आपसे मैं कहना चाह रहा हूं, आप समझ रहे हैं हम और आप कुछ और कर रहे हैं? नहीं, हम कुछ और नहीं कर रहे हैं। खुदा ने कहा नाउज बिल्ला, अगर हमने अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं किया तो फिर वो वही हो रहा है जो पहले हो चुका है। उनके पास भी यही एक्सक्यूजेस थी, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। अच्छा, मिसाल के तौर पर जब अल्लाह के रसूल ने बुलाया तो क्या उनके पास ये ऑप्शन था कि वो कहें अल्लाह के रसूल ऐसा है कि मेरी जो अभी फसल खड़ी हुई है मैं जरा फसल काट लूं, आप तशरीफ ले जाइए, फसल काट लूं, पहले ये मामला निकाल लूं, उसके बाद मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा, ये ऑप्शन था क्या? नहीं। अमीर मोमिनीन जंगों के लिए बुलाते थे, 4 साल में 3 दफा बुलाया, जब इसे 10 महीने चली थी। मैं आपको 10 महीने आपके कारोबार से दूर ले जाऊं, एक डेजर्ट के अंदर रखूं, 10 महीने तक जंग चलती रही जिसमें कोई माल गनीमत नहीं मिला। उसके बाद आप अपने शहर वापस आए, आप साथ देंगे? फिर कूफे में अगर अमीर मोमिनीन का साथ नहीं दिया तो आपने बुरा कह लेते। आप और हमने एक बात सोची हुई है, दीन के नाम पर सख्त इम्तिहान नहीं होगा। ये गलत बात किसने सिखाई? गलत बात है, दीन के नाम पर बहुत सख्त इम्तिहान होगा। मुझे याद है मैं बचपन से ये बातें सुनता आ रहा हूं। वो क्या सुनता आ रहा हूं? मैं बहुत मदद चाहता हूं, ये बात बहुत सख्त लगे आपको। वो कहते हैं अजा मुनाकिद करो तुम्हारे घर में बरकतें ही बरकतें आएंगी। हाँ, बात सही, अजा मुनाकिद करो तुम्हारे घर में बरकतें ही बरकतें आएंगी। बरकत किसे कहते हैं? एक आदमी ने अपना घर बनाया, बहुत अच्छा सा घर बनाया, उसने मुझे बुलाया, कहने का मौलाना मैंने घर बुलाया बनाया है, आप आकर मेरे घर में दुआ कीजिएगा। मैंने कहा मैं खतरनाक आदमी इस मामले को, मैं दुआ बहुत खतरनाक करूंगा। कहने चलिए आप आ तो जाइए, आप दुआ कर दीजिए। खैर, मैं आया, मैंने इधर उधर की कुछ बातें की, उसके बाद उसने कहा मौलाना दुआ करें। मैंने कहा तुम आयुर्वेद के मानने वाले? मैंने कहा रूए जमीन के ऊपर सबसे अच्छा घर कौन सा था? कहने का रूए जमीन के ऊपर सबसे अच्छा घर बीबी का घर था। मैंने कहा उस घर का कोई फर्द नहीं बचा था, सब शहीद हुए। मेरी नजदीक ये बरकत है, इस बरकत की दुआ कर दूं? तैयार? बरकत मिलेगी। बरकत किसे कहते हैं? बरकत इसे कहते हैं जान जान बीमारी से ना जाए, अल्लाह के राह में शहादत होती जाए, ये बरकत है। और उस तरफ से बरकत मैं दुआ करूंगा। ऐसा है मतलब हमारी ओरिएंटेशन गलत है, हम कुछ और समझ रहे हैं। हमने मस्जिद से अजा क्यों मुनाकिद की? नाऊज़ुबिल्लाह ताला, अगर इसने मुनाकिद की अजा मुनाकिद करो पैसा ज्यादा आएगा। वह अबू सुफियान का रास्ता है, वह अबू सुफियान का रास्ता है। तुमको ज्यादा पैसा चाहिए? बनी उमैया के पास बहुत पैसा था, अमीर मोमिनीन की बरकत ही बरकत नहीं थी। अमीर मोमिनीन की बरकत क्या थी? फरमाया मैं अपने फर्जंद को कुर्बान करूंगा, ये बरकत है। ऐसा नहीं होता, आप कहीं और के मानने लगे, आपको चीजों को किसी और तरह देखना है, आप करबला के नाम पर जमा होने लगे। मैं खिदमत नाज करना चाह रहा हूं, आप अपनी जिंदगी को किसी और तरह से देखिए। जिन लोगों ने साथ दिया उनकी सिफर की थी वो अपने माशरे के जुल्म की बाहरी थे, अपने माशरे के जुल्म से बगावत करते थे, उनके अंदर आवाज उठाने की ताकत होती थी, आवाज उठाने पर कुर्बानियां भी देते थे और उन कुर्बानियों के बाद किसी पर एहसान नहीं जमाते थे। आपको ऐसा होना होगा, मुझे और आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि हम हक की खातिर आवाज भी उठाएंगे ظالم کا مقابلہ بھی کریں گے, اس کی طرف سے مصیبتیں بھی اٹھائیں گے اور اللہ پہ احسان بھی نہیں رکھیں گے. یہ سب کریں گے. اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سید الشہداء کے سچے چاہنے والے ہیں, آپ کو یہی ہونا ہے, آپ کو یہی ہونا ہے, چاہے آپ اس وقت کسی بھی فیز میں ہوں. ہم سب ایک راستے پر چل رہے ہیں جانے محترم. کچھ لوگ بھاگ بھاگ کے چل رہے ہیں, کچھ لوگ لنگڑا لنگڑا کے چل رہے ہیں. ہم سب کا راستہ ایک ہی راستہ ہے, ہم سب کو سید الشہداء تک پہنچنا ہے. ہم میں سے کچھ لوگ تیز تیز چل رہے ہیں اور کچھ لوگ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے ہیں. کوئی مشکل نہیں, سب کا قافلہ ایک ہی ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ دھیان میں رکھیے گا, یہ راستہ آسان نہیں ہوگا, جیسے مشکلات آئیں گی. آپ اپنے آپ کو اس بڑے مقصد کے لیے تیار کیجیے. بس اجدان محترم, یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, آخری جملہ درج کرتا چلوں, یہ مت سوچیے گا میں ساتھ میں ایک دفعہ مجلس میں آؤں گا میں نے سید الشہداء کے مقابلے میں ذمہ داری ادا کر دی. مت پہلائیں اس طرح سے. یہاں آپ ذمہ داری ادا کرنے نہیں آئے, یہاں اپنے وعدے کی تجدید کے لیے آئے. ایک بار پھر عہد کرنے آئے, مولا آپ کا وفادار رہوں گا. یہ وعدہ وفا کرنے کی تجدید ہے. وعدہ کہاں وفا کریں گے؟ باہر جا کے. جب باہر جا کر آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے تب آپ نے وعدے کی وفا کر دی. یہاں تو صرف آپ جمع ہوئے ہیں اس فلیش کو دوبارہ دہرانے کے لیے, اس لبیک کو کہنے کے لیے کہ مولا آپ نے حمد الناصر یا سرنا کہا تھا, میں نہیں تھا شروع کے دن, میں یہاں پہ آ جاؤں. کیوں آیا ہوں؟ اس بات کو دہرانے کے لیے کہ مولا میں آپ کا خادم رہوں گا. تم خادم رہو گے تو کیا کرو گے؟ ایک جملہ زیارت عاشورہ سے, زیارتوں سے, تمام تقریباً زیارتوں کے اندر سید الشہداء کی, انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم. یہ بہت بڑا نعرہ ہے, یہ بہت طاقتور نعرہ ہے. انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم, اے امام اس سے صلح کروں گا جس سے آپ نے صلح کی, اور اس سے لڑوں گا جس سے آپ نے جنگ کی. میں ہاتھ خالی چھوڑ کے نہیں بیٹھوں گا, میں پوری زندگی جہاد کروں گا آپ اس کے معنی میں. اور اگر کوئی ایک آدمی ایسا ڈھونڈنا ہے آپ کو, مثلا کوئی مجھ سے کہ آپ کو ایک نام بتایا, میں نے حضرت حمزہ کا نام بتایا. اب اگر کوئی کہے اور بہادر انسان, آزاد انسان, معاشرے کے ظلم پر بغاوت کرنے والا, اپنے سر کو اونچا رکھنے والا, عزت دار, باشرافت, با کرامت, میں کہوں گا حر کا نام. اور کرام آزاد انسان. یہ عجیب ہے واقعا خدا تعالیٰ کا عجیب نظام کا کہ حضرت حور کا نام حور ہے, آزاد انسان. یہ آزاد انسان, آزاد انسان کون ہوتا ہے؟ جو نفس کی قید میں نہیں آتا, کسی کے خوف کی قید میں نہیں آتا, آزادی دکھاتا ہے. حضرت حور کے اندر کچھ خاصیتیں ہیں. بہت اچھا ہے کہ آج میں حضرت حور کے مسائل کی طرف جا رہا ہوں, موضوع میں مناسبت بھی بنتی ہے نا. حضرت حور میں کچھ خاصیتیں ہیں. مثلا ایک خاصیت ان کے اندر ہے, حق کو پہچاننے کے بعد دیر نہیں کریں گے. حق کے تابع دار, اپنے نفس کے تابع دار نہیں ہے, اپنی پوسٹ کے تابع دار نہیں ہے, وہ طاقت کے تابع دار نہیں ہے, وہ حق کے تابع دار. چاہے کوئی ماننے والا اس کا ہو, چاہے کوئی اس کا ماننے والا نہ ہو, اسے حق کو پہچانتے ہیں. لہٰذا حضرت حور کے مکالموں کے اندر ایک عجیب مکالمہ موجود ہے کہ فرماتے ہیں حضرت حور, ان کی کسی دوست نے ان سے مکالمہ کیا تو اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا, کہا میں جب کربلا کے لیے نکل رہا تھا, جب حضرت حور کربلا کے لیے جا رہے تھے, جب کربلا کی طرف جا رہے تھے تو کس سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے؟ سید الشہداء سے لڑنے کے لیے, سید الشہداء کے مقابلے کے لیے جا رہے تھے. تو کہہ رہے کہ جب میں کربلا کی طرف جا رہا تھا کوفہ چھوڑ کر, تو مجھے یوں لگا جیسے پیچھے سے کسی نے آواز دی, اس کو جنت کی بشارت دے دو. کہنے کہ مجھے ایسا لگا جیسے پیچھے سے کسی نے آواز دی, اب شروع ہو بالجنہ, اس کو جنت کی بشارت دو. تو کہنے کہ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے جنت کی بشارت کہاں مل رہی ہے؟ میں سید الشہداء کے سامنے جا رہا ہوں, سید الشہداء پسند جا رہا ہے, میں اسے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں, مجھے کہاں جنت کی بشارت مل رہی ہے؟ لیکن بہت آزاد انسان, آزاد انسان. اس پہ آپ ہمیشہ غور کیجئے کہ ان لوگوں کی زندگیاں تبدیل کیسے ہوتی ہیں. किस पॉइंट पर जाकर इनकी जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। और सैयद शहदा ने हुर को सारे मौके दिए उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। ये जो आइमाए हिदायत होते हैं, हिदायत के इमाम होते हैं, इनका तरीकाकार ये होता है कि ये किसी को गुमराही में नहीं देखना चाहते, ये उसको सारे मौके दे रहे होते हैं। क्यों मौके दे रहे होते हैं? ताकि एक आदमी शायद बच के आ जाए, एक एक आदमी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, टाइम लगा रहे होते हैं। क्यों देख रहे होते हैं? ये आदमी आजाद इंसान है, ये यहां पर गलत खड़ा हुआ है, इसको यहां से निकल के आ जाना चाहिए। हजरत हुर के साथ यही हुआ है। सैयद शहदा हजरत हुर को पहचानते हैं, हजरत हुर को जानते हैं, और हजरत हुर के अंदर अच्छी बातों में से, नहीं मालूम उनकी जिंदगी किस तरह से गुजरी हुई, हमें क्या मालूम, अच्छी बातों में से जो हमें समझ में आई है एक बात यह, हजरत हुर एहतराम करते हैं अहले बैत का, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। हजरत हुर दुश्मनी करने के लिए आ रहे थे, लेकिन एहतराम अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का देख गया था। सैयद शहदा के सामने पहुंचे, सैयद शहदा के लश्कर के मुकाबले में आए, और बड़ा खूबसूरत एक वाक्य है, मैं आपकी मातमदारी के लिए वक्त जाहिर है कि आपको चाहिए और मैं उसके उसका एहतराम करना चाहता हूं। इन कुछ रिवायतें अगर मैं अभी अर्ज न कर पाया तो मैं फिर आप में महरूम रह जाऊंगा, फिर मैं शायद सारे साल अपने आपसे सवाल करूंगा कि मैंने इसका वक्त क्यों नहीं निकाला था। लिहाजा मैं सिर्फ आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। हजरत हुर का जब लश्कर सैयद शहदा के सामने पहुंचा तो ये लश्कर प्यासा था। सैयद शहदा ने जैसे इस लश्कर को देखा, हुर ने कहा कि मैं आपको रोकने के लिए आया हूं। सैयद शहदा ने कहा कि हुर हम बाकी बातें बाद में करेंगे, हम तुम्हारे होठों को प्यासा देख रहे हैं, क्या तुम प्यासे हो? तुम्हारा लश्कर कैसा है? हजरत हुर ने कहा कि हम रास्ता भटक गए हैं और हमारा पानी खत्म हो गया है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हैं। फरमाए हुर अब मामला बाद में होगा, पहले हम तुम्हें पानी पिलाएंगे, पहले हम तुम्हें पानी। ये कौन है? ये अली का बेटा है, ये रसूल खुदा का नवास है, इसने किसकी सुन्नत पे अमल किया है? उसी सुन्नत पे अमल किया है जो इसके नाना ने अमल किया था। अल्लाह के रसूल ने यहूदियों के एक किले का मुहासरा कर दिया, पानी अंदर जा रहा था एक जगह से जिससे किले वाले इस्तेफादा करते थे। मुसलमानों ने अल्लाह के रसूल के पास आकर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, अगर इस पानी में जहर मिला देंगे तो इन लोगों को पानी नहीं मिलेगा, फिर ये लोग सरेंडर कर देंगे, हम किले पर कब्जा कर लेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखो, पीने का पानी किसी का मत रोको, पीने का पानी मत रोको, तुम्हारी जंग है इनसे, तुम्हारे बाजुओं में ताकत है, इनसे जंग करो, लेकिन तुम यहूदियों के ऊपर भी पानी नहीं रोकना, हम पानी नहीं रोकेंगे। अल्लाह के रसूल ने पानी नहीं रोका। मौलामोमिन जंग सिफ्तीन में एक मौके के ऊपर पानी पर पहुंचे, बनी उमैया के लश्कर ने पानी पर कब्जा कर लिया, वो पहले से वहां मौजूद थे। अमीर उलमोमिनीन ने एक खुतबा जर्रा इरशाद फरमाया, अपने लश्कर वालों से कहा तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो प्यास से मर जाओ या बहादुरी से हमला करो और पानी के ऊपर कब्जा कर लो। लश्करियों को जोश आया, उन्होंने दुश्मन के ऊपर हमला किया, पानी के ऊपर कब्जा हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मौला अब हम इनको पानी नहीं लेने देंगे। अमीर उलमोमिनीन फरमाया नहीं, हमने अल्लाह के रसूल से यह नहीं सीखा, हम पानी सबको लेने देंगे। कहा इन्होंने हमारे ऊपर पानी बंद किया था, कहा इन्होंने बंद भी किया और तब भी हम इनको पानी जरूर दें, हम इनको पानी जरूर दें। ये रसूल की सीरत, वो अली की सीरत, और ये नवासा रसूल अपने दुश्मनों के सामने फिर खड़ा हुआ है और आकर हुर से कहा है कि ऐ हुर, अगर तुम प्यासे हो और तुम्हारे होंठ प्यासे हैं तो जंग की बात बाद में होगी, हम तुम्हें पानी पिलाएंगे। सैयद शहदा पानी पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। हुर के लश्कर में एक बंदा था, एक शख्स था जिसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, उनको पानी नहीं मिल रहा था और वो बहुत अपने आप को घसीट घसीट के लश्कर के पीछे लेके जा रहा था। तो वो शख्स बयान करता है रिवायत के अंदर, और रिवायत काबिले इत्मीनान है हमारे नजदीक, वो कहता है कि मैंने दूर से देखा जैसे मेरे लश्कर वाले पानी पी रहे हैं, तो कहता है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं चल के जाता वहां पर, तो मैं जमीन के ऊपर अपने आप को घसीट रहा था ताकि मरने से पहले वहां तक पहुंच जाऊं और मुझे पानी नसीब हो जाए। तो कहता है कि मैंने देखा कि सब लोग पानी पीने और पिलाने में मशगूल है और कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा है, शायद मेरी जान जाने वाली है। कहता मैंने इतनी देर में देखा सैयद शहदा एक जगह के ऊपर बैठे हुए थे। कहता सैयद शहदा ने मेरी तरफ देखा कि मैं इस तरह घसीट घसीट कर अपने आप को लश्कर की समझ ला रहा हूं, तो कहता है कि मौला ने किसी और से कुछ नहीं कहा, खुद पानी उठाकर मेरी समझ आना शुरू कर दिया।
फरमाता इमाम हुसैन खुदा है मेरे पास, जब मेरे पास आए तो देखा मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है और मैं पानी नहीं पी सकता, तो सैयद शौदा ने मुझसे कहा कि तुम अपना चुल्लू बनाओ, मैं तुम्हारे चुल्लू में पानी डालूंगा। कहता मैं अपने हाथों को जमा करना चाहता था लेकिन मैं इतना कमजोर था कि मेरे हाथ टकरा टकरा के एक दूसरे से लड़खड़ा जाते थे और पानी गिर जाता था। तो कहता मेरे मौला ने मुझसे कहा तुम घबराओ नहीं, मैं पानी पिलाए बगैर नहीं जाऊंगा, मत घबराओ। उसके बाद फरमाया कि अगर तुम मेरे हाथों को जमा करने की ताकत नहीं है अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे मुंह में पानी डालूंगा। अब तुम अपना मुंह खोल दो, मैं तुम्हारे मुंह में पानी डालूंगा, मैं तुमको प्यासा नहीं देखना चाहता हूं। कहता मैंने पानी पीना शुरू किया, मैंने जल्दी की, मौला ने फिर मुझे आसरा दिलाया, कहा जल्दी मत करो, आहिस्ता आहिस्ता पानी पियो, मैं तुम्हें पानी पिलाए बगैर नहीं जाऊंगा। मैं इस शख्स से बस एक बात कहूंगा कि आशूर के दिन सकीना को पानी नहीं दे सकता था, तूने तो खुद देखा था किस तरह इमाम हुसैन ने तुझे पानी पिलाया था। क्या तुझे उनसे के यतीम बच्चों की रोने की आवाज नहीं आ रही थी कि कहीं तू भी हिम्मत कर देता किसी एक बच्चे को पानी पिला देता तू भी। उदाहरण से युद्ध शुआ था, क्या हुसैन के बच्चों का इतना आंख नहीं था कि जिसने हजार का लश्कर पानी पिलाया था चल तू डाली अंदर को पानी के मिल जाते। इस दुनिया ने इसे तंग किया है, औलाद हुसैन तो जुल्म हुआ है। वो सामने आए सैयद शुहदा के, सैयद शुहदा के नाम सुन पानी पहले पानी पिलाएंगे, पानी पिला दिया और मुकाबले के ऊपर बाकी रहे, और मुकाबले पर बाकी रहे। अब सैयद शुहदा को हुर को कहीं हिदायत देनी है, हिदायत देनी है। एक मौके पर हुर ने बदकलामी की, थोड़ा तेज आवाज में बात की, सैयद शुहदा ने एक जुमला उसे कहा, कहा ए हुर, थोड़ा सा डांटा और उसके बाद कहा सकलत काम हो ए हुर, तेरी मां तेरी अजाब में बैठे। मैं जब ये पहली दफा जुमला अपनी तालबे इल्मी में पढ़ा तो मैंने अपने अपने आप से एक सवाल किया कि जो सैयद शुहदा ने कहा तेरी मां तेरी अजाब में बैठे, क्या कभी इमाम चाहेंगे कि किसी की मां उसके बेटे के गम में बैठे? कभी इमाम चाहेंगे? मेरे जहन ने कहा इमाम रहीम है, इमाम करीम है, कोई इमाम नहीं चाहेगा कोई मां अपने बेटे की अजा में बैठे, बेटे के गम में बैठे। तो फिर मेरे दिल ने पूछा कि ये सही तो शोला ने क्यों कहा था, क्यों कहा था? सिर्फ एक बात खातिर कहा था, और बीवी का बहुत एहतराम करते थे। हुर ने फौरन जवाब में कहा ए हुसैन, अगर अरब में कोई और ये जुमला कहता तो मैं कहता उसकी मां आजा में बैठे, लेकिन आपकी मां फातिमा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपकी मां सैयदा। ये हुर के अंदर का एहतराम है सैयद शहदा के लिए और बीवी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए। इस एहतराम ने हुर को निजात दी है, इस एहतराम ने हुर को निजात दी है। अगर आप लश्कर इमाम में जाना चाहते हैं बीबी के नाम का एहतराम कीजिएगा, बीबी के नाम का एहतराम कीजिएगा, आपको इमाम के लश्कर में आना नसीब हो सकता है। हुर शब आशूर एक मौके के ऊपर पहुंचे, अब किसका साथ दूंगा? और शब आशूर अजीब तहजीब है, अजीब शब थी। आंखों के लिए लाइटें बंद कर दी जाती हैं, क्यों लाइटें बंद की जाती हैं? ताकि शायद आप उस तारीखी को समझें जिसमें हुसैन के बच्चे कह रहे थे अल्लाह कोई जो पानी पिलाए। खुद के कानों में बार बार अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही थी और अपने अंदर मुनकलब हो रहे थे, बार बार अपने आप से कह रहे थे फातिमा के बच्चों को तूने प्यास में रखा है। बार बार ये सवाल उनके जहन में आ रहा था, तुम मुजरिम हो, तुम्हारी वजह से भारत के बच्चे प्यासे हो गए। बस एक मौके के ऊपर मुनकलब हुए, कह मैं दुनिया को छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं हुसैन का साथ देने जाऊंगा। एक मौके पर एक आदमी देखता है सुबह आशूर हुर के ऊपर लर्जा ताजी हुआ हुआ है, वो हुर के नजदीक आता है और कहता है हुर अरब में तुझसे ज्यादा बहादुर कोई नहीं होगा, तू सारा सबसे ज्यादा बहादुर है, लेकिन तेरे जिस्म पे लर्जा ताजी हुआ हुआ है, क्या दुश्मन के खौफ ने तुझे लर्जा दिया है? तो हुर ने एक अजीब जुमला कहा, कहा दुश्मन के खौफ ने नहीं, मैं जन्नत और जहन्नम के दरमियान में खड़ा हुआ हूं। मुझे फैसला करना है मैं किसका साथ देने वाला हूँ। और ने वो फैसला किया जो एक आजाद इंसान को कर लेना चाहिए था, और ने फैसला किया सैयदुल शुहदा का साथ दे दिया। अब मारेका एक और तरह से शुरू हुआ, सैयदुल शुहदा का साथ दिया, अपने फर्जंद को लेकर आए, अपने फर्जंद को लेकर आए। बुरा तारीख के मुताबिक, रिवायात के मुताबिक फर्जंद से कहा कि देखो बेटा मैं इमाम हुसैन के सामने जा रहा हूँ, अब मेरा दुनिया से कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहेगा, तुमको मेरे साथ आना है तो हम हुसैन की तरफ जाएंगे, लेकिन हम नहीं बचेंगे, हम लोग शहीद हो जाएंगे। उसने कहा बाबा मुझे शहादत कबूल है, मैं इमाम हुसैन का साथ दूंगा। अब सैयदुल शुहदा की संग बढ़ना है। ऐसा मोहतरम नहीं मालूम आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी से माफी मांगनी पड़ी हो या ना मांगनी पड़ी हो। माफी मांगना इंसान के लिए बहुत सख्त होता है। अगर सामने वाला सख्त दिल हो और माफी मांगनी पड़े तो बहुत सख्त होता है, लेकिन ये दर हुसैन का दर है, ये करीम का दर है। करीम की तारीफ में आपकी खिदमत में कभी अर्ज करूंगा। करीम वो इंसान होता है जिससे जरा सा कहो माफ करो तो माफ कर देता है, ये करीम का दर है। और को पता है ये करीम का दर है, लेकिन गलती बहुत बड़ी गलती है। लिहाजा जाने से पहले अपने फर्जंद से कहा कि देखो बेटा मैंने इमाम हुसैन के साथ बहुत गलत काम कर दिया है, मेरा जुर्म बहुत बड़ा है, ये जो बच्चे प्यास नहीं है मेरी वजह से है, मुझे इमाम हुसैन से माफी मांगनी है। अब तुम मेरे साथ एक काम करो, तुम मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो ताकि मुझे निजामत की आंखों से ना देखना पड़े, और मेरे हाथ में रस्सी बांध दो ताकि मैं गुलामों की तरह अपने मौला की संग लाया जाऊं। बस बच्चे ने अनंत किया और हुर को गुलामों की तरह घसीट कर सैयदुल शुहदा के दरवाजे की तरफ लाए, और सैयदुल शुहदा के दरवाजे की तरफ पहुंचकर हुर ने एक जुमला कहा, कहा मौला क्या किसी मुजरिम की माफी कबूल है? और सैयदुल शुहदा ने फरमाया हाँ हुर, तेरा जुर्म किया बहुत बड़ा लेकिन तेरी माफी कबूल है। हुर कदमों में गिर गए, कदमों में गिरे, सर उठाया, मौला से कहा मौला अगर मेरी माफी कबूल है मुझे जिहाद की इजाजत दे दीजिए, मैं जंग में जाने की इजाजत चाह रहा हूँ, मुझे दो जुमले बस आपसे अर्ज करने हैं। एक मौके के ऊपर फरमाया हुर हमने सख्तियों के लिए दोस्त नहीं रखे होते, हम दोस्त आसानियों के लिए रखते हैं, लेकिन तुम सख्ती में हमारा साथ देने के लिए आए हो। इजाजत मरहमत की, फरमाया अगर मैं जाना चाहूं मैं चाहता हूं पहले मेरा जवान बेटा जाएगा। हुर ने कहा पहले मेरा जवान बेटा जाएगा। हुर को इजाजत मिली, जवान बेटे को रुखसत किया। अब अजीब मरहला आया, ऐसा मोहतरम खुदा हम सबके जवानों को महफूज, खुदा हम सबके जवानों को महफूज करे। अली अकबर के बस एक मौका आया, हुर का जवान बेटा आगे बढ़ा। हुर कभी इधर पहलू बदलते थे कभी उधर पहलू बदलते थे। किसी ने कहा कि हुर अगर जवान की मौत इतनी सख्त थी तो भेजा क्यों था? बोला जवाब दिया कि मैं चाहता था देखूं जब अली अकबर जाएंगे मेरे मौला के ऊपर क्या बीत रही होगी। एक मौके पर वो बेटा जमीन पर गिरा, वो जमीन पर गिरा, उसने निदा दी, नहीं मालूम किसको निदा दी। हुर खड़े हुए अपने जवान का लाशा लेने के लिए जाए, वो करीम इमाम तशरीफ लाए और कहा हुर तुम लश्कर को छोड़कर आए, तुमने आंखों पे पट्टी बांधी, तुमने हाथों में रस्सी बांधी, ये सब तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन जवान का लाशा लाना ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। वो शहर खुद जाएगा तेरे जवान का लाशा लाने के लिए, मैं कहूंगा बोला तेरे करीब वो बस कौन सा वक्त जब अली अकबर मेरे बिहार निकल रहे थे, मेरे बोला अली अकबर का लाशा उठाने के लिए।
अय्यामुन कदरियन कदरू मातमे हुसैन